ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہایت عقیدت اور محبت اور دل کی گہرائیوں سے عشق و محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے. صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاتم و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفعت کس طرح بیان فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذکر کو بلند کیا، اور جس کا ذکر پروردگار عالم بدل بلند کرے اسے کون نیچا کر سکتا ہے؟ اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ ارے ان کا کیا، ان کے غلاموں کا بھی کوئی گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتا ہے، اور گھٹانے والے خود گھٹ گئے مٹ گئے. اس لیے امام اہل سنت بھی پکارتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا جب آپ کے غلاموں کا یہ حال ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مرتبہ و مقام ہوگا؟ حدیث قدسی میں پروردگار عالم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اینما ذکرتو ذکرتا معیا، اے پیارے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں تمہارا بھی ذکر ہو جائے گا، جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا. اور کہاں ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ آسمان ہو وہاں پر پروردگار کا ذکر ہو رہا ہے، زمین ہو وہاں پر پروردگار کا ذکر ہو رہا ہے، زمین کے اندر ہو وہاں پر بھی پروردگار کا ذکر ہو رہا ہے، پانی ہو اس کے اندر بھی پروردگار کا ذکر ہو رہا ہے. دنیا کا کون سا کونا ہے، کون سا چپا ہے، کون سی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ رب العزت کا ذکر نہ ہوتا ہو، اور جہاں جہاں رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر رسول اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اسی لیے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی پکار اٹھے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. کیسا فریرا ہے، کیسا وہ فریرا جھنڈا اڑ رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ دیکھیے حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور کہ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جب آئے تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر نصب کر دیا، اور ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ ایک جھنڈا حضرت آمینہ کے گھر میں بھی گاڑا، اور ایک جھنڈا اسی کعبہ مقدس کی عین اوپر بیت المعمور ہے، اور وہاں پر بھی ایسا ہی کعبہ ہے جیسا کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے، اس کعبے پہ بھی ایک جھنڈا نصب، اس बैतुल मामूर पे भी एक झंडा नसब कर दिया है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फादरी बरेलवी उसी बात को बयान फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और हमें अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फादरी बरेलवी के बिरादर हजरत हसन बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता हर्ष उड़ा फरेरा सुबह शबी सुबह शबी विदादत। तो ये है रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा। अभी आप एक नाज शरीफ हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजली बरेलवी की समाअत फरमा रहे थे, जिसमें हजरत फाजली बरेलवी ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान बयान फरमाई है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। तो जब उनकी महक का ये आलम है तो फिर उनके जिक्र का आलम क्या होगा, और उनसे अकीदत और मोहब्बत और इश्क का आलम क्या होगा कि खुशबू का आलम ये है कि गुंचे खिल जाते हैं। और ये हदीस की तर्जुमानी फरमाई है कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा बार हैं और तमाम सहाबाए किराम गिरदा गिर्द जलवागर हैं, और अचानक हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठे और चले गए, और हम इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगे अब आएंगे अब तशरीफ लाएंगे, लेकिन देर पे देर हो रही है। तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा हुई कि आखिर क्या वजह है कि हुजूर अब तक वापस तशरीफ नहीं लाए, क्योंकि अगर कोई ऐसा मामला होता कि जब वापस नहीं आना होता तो फरमा देते जाओ हम अब वापस अब जा रहे हैं अपने काम से, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बयान फरमाया और चले गए। सहाबाए किराम बैठे हुए और खुलफाए राशिदीन भी बैठे हुए, खुलफाए अरबा भी बैठे हुए हैं, लेकिन हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सबसे पहले मेरे दिल में बेचैनी पैदा हुई और मैं उठ के चला, और मेरे पीछे पीछे भी सब लोग उठ के चले गए, और जो है चले जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, तो वो जाने वाली जाने के लिए क्या चाहिए और उसको पता किधर कैसे कि वो जा गए तो किधर गए हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो किस तरफ तशरीफ लेके गए हैं ये कैसे पता चलेगा, लेकिन वो पता इस तरह चलेगा कि जहां से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं वो इलाका पुरमुअत्तर हो जाता है, खुशबू से मुअत्तर और मुजल्ला हो जाता है, इसलिए उसकी खुशबू में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। और जा करके रुकते भी वही है कि जहां पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा घर है, जहां पर है वहीं पर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, और खुशबू तो महक रही होगी तो आगे भी बढ़ जाते, लेकिन उनको पता चल गया कि नहीं बस अब बरकत यही है, अब इसके आगे नहीं जा रही है, इसके आगे नहीं यहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और वो बनू नज्जार का बाग था उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, और तशरीफ ले गए तो अब उसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ऐसा हुजूर की याद में महव थे हजरत सैयदना अबू हुरैरा, इतना गर्क थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में कि जनाब उनको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है कि बाग बना है तो बाग के लिए कोई रास्ता तो होगा ना, बगैर रास्ते के बागबानी कैसे होगी, और उसके अंदर लोग जाएंगे कैसे, उसकी रेख देख कैसे करेंगे। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जब इसमें तशरीफ ले गए तो कोई रास्ता तो है ना, तो रास्ता है लेकिन वो ऐसे गर्क है कि रास्ता नजर नहीं आता है। बहरहाल उनको छोटा सा एक नाला नजर आया जिसमें से उस बाग के अंदर पानी जा रहा होता है। तो जैसे ट्यूबवेल का पानी बहता है तो नाली के जरिए वो बाग के अंदर सिंचाई के लिए जाता है, तो वो नाला जा रहा था, तो उसी नाले में सुकड़ पकड़ के किसी तरह अंदर पहुंच गए और वहां पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। तो देखो पहुंच गए कहां, वहीं पर जहां पर रसूल कायनात जलवागर हैं वहां पर पहुंचे। तो पहुंचे कैसे, उसी को इमाम अहले सुन्नत बताते हैं, इस तरह पहुंचे, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, खूंचे बसा दिए हैं। और ये अशआर जो है हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखे थे, कब ये इमाम अहले सुन्नत ने लिखे थे, जबकि इसको मुकम्मल उन्होंने इस नात को मुकम्मल नहीं किया था। आपके भाई हजरत हसन हैं, तो हजरत हसन बरेलवी वो दाव देहलवी के शागिर्द हैं इस मामले में। तो दाव देहलवी बड़े उम्दा किस्म के शायर थे और उनकी इस्लाह लिया करते थे हजरत हसन बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तो उनके साहबजादे लेकर के उनका कलाम जाते थे। तो एक मर्तबा उनका कलाम लेके जा रहे थे सुबह सुबह, तो हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पूछा कहाँ की तैयारी है। कहा वाली साहब ने चंद कलाम लिखे हैं, तो दाव देहलवी के पास जा रहा हूँ उसकी इस्लाह कराने के लिए, वाली साहब भेज रहे। कहा अच्छा ये ले जाओ, ये मैंने भी एक कलाम लिखा है, अभी इसका मक्ता भी नहीं लिखा है, और ये ले जाकर देना, क्या हो वो उनसे इस्लाह करा लेना, देख लेना, उनको भी दिखा देना। तो हजरत दाव देहलवी कि जब कलाम वो पेश किया तो वो खुद फरमाते हैं कि जनाब वो तो पढ़ने लग गए और हर शेर पर उनके आंसू की लड़ियां बंद ही नहीं हो रही है, और पढ़ते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं, आंसू की लड़ियां जारी हैं, जारी हैं। कहा कि ये तो कौसरों तस्नीम से लिखा हुआ कलाम, ये इल्हामी कलाम है, ये उनका लिखा हुआ नहीं, ये इल्हामी कलाम है, इसमें कोई जगह कोई गुंजाइश नहीं है किसी हर्फ की कमी बेशी करने की, ये तो कौसरों तस्नीम से धुनी हुई जुबान इस्तेमाल की गई है और इसका मक्ता नहीं लिखा गया है, तो मैं मक्ता ये पेश कर देता हूँ और अपने चचा जान से कहिएगा कि ये मक्ता इसमें शामिल कर ले मेरी तरफ से। तो फरमाते हैं क्या मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, क्यों कहा, इसलिए कि ये पूरी जो नाज शरीफ लिखी है तो आप देख लीजिए कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किस शान से उन्होंने तारीफात बयान फरमाई है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अगर कोई उनसे जर्रा मांगे, थोड़ी सी चीज मांगे, तो रसूल कायनात थोड़ी सी क्या उसको इतना दे देते हैं, इतना देते हैं कि उनके यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कभी आपने किसी मांगने वाले को नहीं कहा ही नहीं है, इतना अता फरमाते हैं, इतना अता फरमाते हैं कि जब कभी कोई भी मामला हो, किसी ने भी कोई कुछ जो है मांगा हो तो हुजूर ने मना नहीं फरमाया, और इतना अता फरमाया, इतना अता फरमाया कि उसके जो है उसके समझ से भी बड़ा, उसके मांग से भी बढ़कर है। देखिए हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये सहाबी रसूल हैं और कैसी आली शान वाले हैं, घूमते फिरते सब जगह पहुंचे, दीन हक की तलाश में कहां कहां चक्कर मारा, फारस से लेकर के सब जगह चक्कर मार मार के आखिर में हक की तलाश करने वाले को हक मिल ही गया और बता दिया जिस राहिब के तरबियत में थे उसने जो पता दिया कि जाओगे देखो एक मदीने में होगा और जो है वो आखिरी नबी होगा और उसकी पहचान ये होगी कि जनाब उसके पीछे कांधे पर जो है वो मुहरे नबुवत होगी और एक दूसरी पहचान ये होगी कि वो सदका नहीं खाएंगे और हदिया कबूल फरमाएंगे। अब जब वो वहां से चले तो जाहिर है वो तो मौका ही और वो जो है वो तो ऐसा मौका वो महल था और ऐसे लूट मार के बाजार गर्म होते थे कि जनाब जो है अकेले जाना बड़ा दुश्वार होता था, तो इसलिए काफिला काफिला के साथ लोग जाया करते थे, तो बहुत बड़े बड़े काफिला मिल करके जाते थे। कहीं का सफर वगैरह करना हो तो एक काफिले के साथ जा चल पड़े, ये भी तो काफिले वालों ने इनके साथ गद्दारी कर दी। क्या किया कि अब वहां से लेकर आए साथ और मदीने में ला करके किसी यहूदी को बेच दिया, कहा ये हमारा गुलाम है आप इसको खरीद लो। उन्होंने उसने यहूदी ने इनको खरीद लिया, अब ये उनकी गुलामी में आ गए, फंस गए। लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तो सुना ही था और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना जाना करना शुरू कर दिया और वो पहले परखने लगे कि मुझे तीन निशानी उसने बयान बताई है, मैं देखता हूँ कि वो तीनों निशानियां इनके अंदर पाई जाती हैं कि नहीं। एक दिन सदका लेकर के गए कि हुजूर ये सदका है कबूल फरमाइए। उन्होंने लिया और जुगत साहबे कराम की बारगाह में दे कि जुगत साहबे कराम को दे दिया और तुम लोग तनाउल फरमाओ खुद, हुजूर ने तनाउल नहीं फरमाया। उनका देखो एक तो मजबूरी हो गई और एक निशानी पा ली गई है। फिर कुछ दिन के बाद गए और हदिया लेकर गए, या रसूल अल्लाह ये हदिया है आपकी खिदमत में नजराना है। हुजूर ने कबूल फरमाया, खुद भी तनाउल फरमाया और सहाबा कराम को भी दिया, ये भी पूरी हो गई। अब तीसरी एक और देखनी थी मुहरे नबुवत, तो मुहरे नबुवत भी एक जो है वो भी किसी बहाने से घूम करके पीछे से देख ही लिया, अब पूरा यकीन हो गया कि हाँ अब ये वही साथ है कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा कहलाते हैं और नबी आखिरुज़्ज़मा है और इन्हीं के ऊपर ईमान लाना है। अब जो है वो आना जाना शुरू कर दिया और बैठा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज हासिल करना शुरू कर दिया। लेकिन वो यहूदी गुलाम यहूदी जो इनका मालिक था इनको बहुत अज़ियत पहुंचाता था और टाइम नहीं देता था, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिक्र करते तो वो उसको बहुत बुरा लगता था, तो जान कट वो चाहते थे कि इससे कभी इससे छुटकारा मिल ही जाए और मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर हमेशा के लिए उनके दर पर पड़ा रहूं, ऐसी गुलामी नसीब हो जाए। तो यही तो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह मेरी जो है इसने तो मेरा नाटका बंद करके रख दिया और मुझे तो निकलने नहीं देता है, मैं आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ लेकिन ये आने नहीं देना चाहता है और दिन मुझे छुट्टी नहीं देता है, कुछ करम फरमा दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया कि ऐ सलमान जाओ उससे पूछो कि तुम्हारी आजादी का क्या लेगा, वो कितना पैसा लेगा वो तुम्हें आजाद करने का। तो हजरत सलमान फारसी गए पूछने लगे कि तुम कितना पैसा लोगे मेरे आजाद करने का, कहा के कहते हैं कि जनाब ना नौ मन तेल हो ना राधा नाचे, मतलब ये है कि ना इतना होवे कि ना ये काम होवे ना हो पाए, यानी इतना रख दो इसके ऊपर कि ये कभी कर नहीं पाए और जब ये नहीं कर पाएगा तो फिर जो है वो गुलामी ही में रहेगा। तो कहने लगा कि देखो 100 खजूर के बाग लगा करके मुझे तैयार करके दो, जब वो फलने लगेगा तब जा करके मैं तुमको आजाद कर सकता हूँ। और बस इतना ही नहीं बल्कि एक और बात सुनो, 40 औकिया तुमको सोना भी देना पड़ेगा तब जा करके तुम्हारी जान छूटेगी, तो इतना रख दो इसके ऊपर बात कि ये कभी हिले ही नहीं और ये सोच भी नहीं सके। لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اس نے تو ڈیمانڈ بڑی ہائی قسم کی رکھی ہے, بڑی اعلیٰ ڈیمانڈ رکھی ہے, کیا کہا ہے؟ آپ 100 کھجور کے باغ لگا کر کے دینے کو کہا ہے اور جو ہے 40 اوقیہ سونا. کہا کوئی بات نہیں ہے, یہ ابھی ہو جائے گا مسئلہ حل. فرمایا صحابہ کرام سے کہا تم اپنے بھائی سلمان کے لیے کھجور کے پودے لے آؤ, جمع کرو جلدی, چندہ کرو. چندہ ہوگی شروع ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کوئی 2 پودا, کوئی 4 پودا, کوئی 10 پودا, کوئی 2-3 کر کے پورا 100 پودا جمع کر دیا فوراً کے فوراً. پھر حضور نے فرمایا ایک جگہ ہموار کرو, اس کو کھود کے نرم کرو, تیار کرو اور مجھے اطلاع کرو. تو صحابہ کرام گئے جلدی سے, ایک پورا پلاٹ بالکل صحیح کر دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اٹھاؤ لے چلو. لے کر چلے اور جناب وہاں پر جا کر کے حضور نے ایک ایک پودا اٹھایا اور لگا دیا, پھر دوسرا لگا دیا, اس طرح 100 پودے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بعد دیگرے لگاتے رہے. لیکن حضرت عمر وہ بڑے دور اندیش تھے, معلوم تھا کہ کچھ ایسے نا ہنجار لوگ پیدا ہوں گے کہ جو کہیں گے ارے کیا رسول اللہ نے تھوڑی ایسا کیا ہے, ان کو اتنا کہاں اختیار و پاور ہے کہ جب جتنا چاہیں جیسا کر دیں, ان کو کیا اختیار ہے, اللہ جیسا چاہے گا وہی ہو, اللہ چاہے گا وہی ہوگا. ارے ہاں اللہ ہی کے چاہنے سے سب ہوتا ہے, لیکن کب رسول اللہ کی چاہت کو اللہ نے پیچھے چھوڑا ہے؟ جو تو وہ ارادہ فرماتے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب, اللہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے, تاخیر نہیں فرماتا ہے. جو آپ تمنا کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں, اس خواہش کو جلد سے جلد اللہ رب العزت پورا فرما دیتا ہے. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت کو کیسے اللہ رب العزت چھوڑ دے گا؟ اس لیے اللہ کی چاہت تو ہے اور رسول اللہ اس کے سب سے چہیتے اور سب سے محبوب ترین بندے اور رسول ہے. تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہیں گے اللہ وہی کرے گا. بلکہ رب تبارک و تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے محبوب ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم کو راضی کر کے چھوڑیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر کے چھوڑیں گے, چھوڑے گا اللہ رب العزت. تو اتنا پیار اور اتنا محبوب بندہ ہے اللہ رب العزت کا وہ, تو پھر وہ کیسے نہیں چند لمحوں میں وہ کام ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے کو دیکھ لیا کہ ہاں ایسے لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرنے والے ہوں گے. انہوں نے آنکھ بچا کر ایک پودا اٹھایا اور خود چپکے سے لگا دیا. اب جناب اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ جناب جو ہے وہ پودے 3-4 مہینے کے بعد خوب لمبے لمبے ہو گئے, بڑے بڑے ہو گئے. تو اب جو ہے بتانا یہ تھا کہ جو ہے نا کہنے والے یہ کہیں گے کہ جناب یہ درخیز جگہ تھی اس لیے جلدی جلدی بڑھ گئے پودا, یہ حضور کے دستِ اقدس کا کمال تھوڑی ہے, یہ تو زمین کا کمال ہے. لیکن حضرت عمر نے یہ بتا دیا کہ نہیں, زمین کا کمال نہیں ہے, یہ حضور کے دستِ اقدس کا کمال ہے. جب آئے دیکھنے تو وہ ننا رہ گیا اور وہ سارے کے سارے بڑے ہو گئے. تو یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو میں نے لگا دیا تھا. کہ اچھا تم نے لگا دیا تھا, ٹھیک ہے. وہ نکالا پھر وہی اسی سوراخ میں نصب کر دیا. پھر اس کے بعد یہ نہ پتا چلا کہ کون پیچھے رہ گیا تھا کون آگے بڑھ گیا تھا, سب ایک ساتھ ہو گئے. بتاؤ اگر زمین کا کمال تھا تو پھر جو ہے یہیں پر نصب کرنے سے کیوں پھر وہ ایک اس کا ساتھ پکڑ لیا, اس کو پیچھے ہی رہنا چاہیے تھا. معلوم یہ ہوا کہ یہ ہاتھ کا کمال ہے, وہ زمین کا کمال نہیں ہے جناب. تو یہ جناب جو ہے चार महीने के अंदर बड़े बड़े हो गए। लेकिन आपको ये भी पता है कि खजूर का बाग कितने दिन में तैयार होता है और कितने दिन में फल देता है, आपको पता है? सबसे ज्यादा टाइम यही लेता है, इससे ज्यादा कोई और दरख्त टाइम नहीं लेता है। समझ गया? जब आम का दरख्त होता है, आप लगाओ तो आम का दरख्त बढ़ करके जब फल देने वाला होगा, तो फल देने के करीब जब पहुंचेगा तो उसकी उम्र कितनी होगी? कम से कम 5 साल। यानी 5 साल में वो जनाब आकर के हमें पौधा देगा, 5 साल से पहले वो फल देगा, 5 साल से पहले हमको फल नहीं दे सकता है। समझे आप? और फिर उसके बाद एक महुआ का दरख्त होता है, उसमें फल लगता है, तो लगते 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 जनाब उसमें भी जनाब जो है ना 25 साल लग जाते हैं, 25 साल लगते हैं। जब तक 25 साल नहीं होगा वो महुआ अपना जो है फल हमें नहीं दे सकता है। इसी तरह जो है इमली का आप देखें तो इमली जो है वो और ज्यादा टाइम लेता है, वो तकरीबन 30 बरस में हमको फल देगा। समझ गया? और ये खजूर का तो पूछो ही नहीं, ये तो ना जाने कितना टाइम लेगा, सबसे ज्यादा टाइम यही लेता है। हिंदुस्तान वाले कहते हैं पांचे आम 25 महुआ 30 साल में इमली का फगुआ। मतलब क्या है कि 5 साल में आम और 25 साल में महुआ और जो है 30 साल में इमली का आपको फल मिल जाएगा, लेकिन खजूर का उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सारा कुछ जो है करके फिर जो है वो कहा कि ये ले जाओ, 4 महीने के अंदर उसमें फल लगा दिया और कहा दे दो और ये 40 औकिया सोना भी दे दो और कहो मेरी जान छोड़ो। तो इतने में फौरन का फौरन हो गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फरमाते हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बड़ा बुलंद मर्तबा है, वरफअना लका ज़िक्रक, के मेरे आका के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद फरमाया है और बुलंद होता रहेगा, दिन ब दिन ज्यादा होता रहेगा। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की ये रात है और कुछ ही देर के बाद वो घड़ी हमें मुयस्सर आने वाली है कि जिस घड़ी में हमारे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो के बाई से तखलीके कायनात हैं, कि उन्हीं की वजह से ये दुनिया जहान में जो कुछ भी आप नेमतें देख रहे हो और जितनी हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमतें अता फरमाई हैं, इन नेमतों को देखते रहो, गिनते रहो और शुमार करते रहो तो शुमार करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। खुद परवरदिगार आलम जल्ल जलालहु इरशाद फरमाता है وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम हरगिज़ नहीं शुमार कर सकते हो, तुम गिन नहीं सकते हो, उसका इहाता नहीं कर सकते हो। तो इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है और उन सब नेमतों के की वजह क्या है और उन नेमतों को अल्लाह ताला ने किस सबब से दिया है, किसकी वजह से तुम्हें अता फरमाया है, वो सारी नेमतों का मंबा और जड़ और मरकज हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो ना थे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। जान है तो जहान है, अब जान नहीं होगी तो जहान कहां से होगा। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु तआला वसल्लम सारी कायनात की जान है, यही रूह है। अगर जिस्म के अंदर रूह होगी तो ये जिस्म काम करता होगा, ये जिस्म बोलता भी होगा, चलता भी होगा और देखता भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इस जिस्म के अंदर रूह नहीं होगी तो अब क्या होगा। अब देखें, आदमी सो जाता है तो फिर उसके बाद उसकी आंखें काम नहीं करती हैं, उसका दिलो दिमाग काम नहीं करता है। क्यों? उसकी रूह खत्म हो गई है, वो सैर करने चली गई है, सो गई है, थोड़ी देर के लिए उसके जिस्म से अलहदा है। तो फिर उसका आलम ये होता है कि जनाब कुछ नहीं उसका पता, अता पता नहीं है। तो जब रूह जब जिस्म से मुंसलिक होती है, जिस्म के अंदर होती है, वैसे तो जिस्म से निकल जाने के बाद भी उसका ताल्लुक इससे बरकरार रहता है और बरकरार रहेगा हमेशा हमेशा। लेकिन जब वो जिस्म के अंदर होगी रूह तो ये जिस्म हरकत करेगा और ये जिस्म के अंदर जान होगी, तो यूं ही समझ लो कि ये सारी कायनात है और कायनात में ये जो सारी चीजें हैं और सारे जो है इनामात और इकरामात तुम्हें नजर आ रहे हैं और तरह तरह की नियामतें तुम्हें नजर आ रही हैं, वो सब हमारे आका सरवरे जो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो वो बाईसे तखलीके कायनात है, इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जो है फिर हर तरफ हरियाली हरियाली हो गई और जितने बातिल थे वो सब के सब सुरनगु हो गए। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो ये किसरा जैसी बड़ी ताकत, कितना बड़ा ऐवान, उसमें भी जलजला आ गया और उसके अंदर 14 कंगूरे थे, वो सब जो है झड़ गए, गिर गए। और फिर ये किसरा का ऐवान जनाब जो है फिर वो दुरुस्त नहीं हो सका, दुरुस्त नहीं हो सका। और जो है लोग जितने वो थे कैसरो और किसरा, बड़ी बड़ी ताकतें, ये सब जो है चकनाचूर होने लगी और उसके बाद जो है उतनी बड़ी ये ताकत फिर नहीं बन सकी और जो है रफ्ता रफ्ता जनाब जो है ये सब चकनाचूर हो गए। तो ये सब किसकी वजह, किसके सबब है? ये हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के सबब है कि आप तशरीफ लाए तो फिर जो है खुशहाली हो गई, हर तरफ हरियाली हरियाली हो गई और जो है जितने बुत थे वो सब के सब औंधे गिर गए, सब के सब औंधे गिर गए। और इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, तेरी आमद थी कि काबा के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थराकर गिर पड़ा, तेरी हैबत थी। तो ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद थी तो जो है ये काबा भी जो है झुक पड़ा। और यही वजह है कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो ये काबा मुकद्दसा के जो जिस तरफ काबे का दरवाजा है, जो मेहराबे काबा है, वो जो है काबा हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाए विलादत की तरफ है, यानी जहां काबा का दरवाजा है उसके बिल्कुल सीध पर चले जाइए तो आपको मौलदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिलेगा। वहां पर हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो जगह है कि जहां आपकी पैदाइश हुई थी। और ये जो है आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो ये मेहराबे काबा भी जो है आपकी तरफ झुक पड़ी, गोया के आपके लिए सजदा रेज है। तो उसी को इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ बयान फरमाया है। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि वो क्या है, मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। तो इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी ने ये बयान फरमाया कि जनाब जो है जब दुनिया में तशरीफ लाए तो ये काबा भी आपके लिए झुक पड़ा, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा मकाम कितना बुलंद वाला है। इसलिए वरफअना लका ज़िक्रक, और ये भी याद रखिए कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर आने वाली घड़ी जो गुजर गई है उस घड़ी से बेहतर होती चली जाएगी। आप दुनिया में खुद मुलाहिजा कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस तरह जिक्र माजी में होता था उससे दिन ब दिन ज्यादा होता जा रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप इसको मुलाहिजा कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वही बयान फरमाता है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, ए प्यारे महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है। तो हर आने वाली घड़ी बदिन बदिन जो है वो बेहतर से बेहतर, यानी रसूल कायनात का चर्चा दिन बदिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, दिन बदिन आपका चर्चा जो है वो बढ़ा जा रहा है। फर्श वाले तेरी शौकत का हुलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اب ناشتہ نو قدرات جو ہیں